الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا بالله. روح القرآن پارہ نمبر 9 شروع کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الملأ. پارے کا نام ہے اور سورت العراف کنٹینیو ہوگی آیت 88 سے. ہم اس بارے میں نہ صرف یہ کہ سورت العراف کو پورا کریں گے بلکہ سورت الانفال کو شروع بھی کریں گے. پیچھے سے قوموں کے قصے چل رہے تھے. قوم شعیب جو ایک کاروباری مزاج کی قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ کیسے باقی انبیاء کرام کی طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اس دور کی جو برائی تھی اس پہ بات کی تو لوگ چڑ گئے. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ابھی سے نوٹ کیجئے گا. ہر نبی نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جو اس قوم میں موجود تھا. یہ ہے ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح مریض کا وہ حصہ جو متاثر ہو اسی کو ٹچ کرتا ہے. کبھی کبھی دین کے نام پر ایک فتنہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کی برائیوں پہ مت ٹوکو اور جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دو. ہاں کچھ اچھی اچھی باتوں کے کرنے کا ساتھ حکم دیں تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے. انبیاء کرام کے ساتھ تھوڑے لوگ کیوں تھے, گنتی کے لوگ کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے معاشرے کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھا یا ہاتھ رکھا. اگر وہ واقعی وہی کرتے جو لوگ چاہتے تھے تو وہ تو سیلیبریٹیز بن جاتے, وہ تو پاپولر پرسن بن جاتے, ان کو تو شہرت تھامتی. تو اس میں ہر اس انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے تو بغیر گھٹائے اور بغیر بڑھائے ود آؤٹ اینی ایگزیجوریشن دین کا جو حکم جہاں پہ فٹ ہوتا ہے اس کو کر دینا چاہیے. پھر آیت 88 سے 89 میں قوم شعیب کے سرداروں کی دھمکی ہے, یعنی جب ان کے مالی معاملات پہ تنقید ہوئی تو یہ غصے میں آگے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, کیا پتہ چلا متکبرین. ہر معاشرے میں جب بھی دین کی دعوت آتی ہے تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ ہوتا ہے, ہیوز, دیکھیے کسی سوسائٹی کے دو گروہ ہیں, ہیوز اینڈ ہیو ناٹ, رکھنے والے کچھ اور نہ رکھنے والے, خالی ہاتھ ہیں کچھ. ان کو کیا لگے ایک ٹماٹر بیچنے والا, اس کو کیا لگے سود سے اور گورنمنٹ کی پالیسی سے اور اس سے اور اس سے, وہ تو اپنے ٹماٹر بیچ کے گھر چلا جائے گا. لیکن جن کے پاس انڈسٹری ہے, جو امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے, ان کو پھر اسلام کے کچھ رولز پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے خوشحال طبقے نے کی, وجہ کیا تھی؟ تکبر. اس لیے آج کے دور کے دینداروں کے لیے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ جب بھی کبھی ایسا کوئی مقام ان کی زندگی میں آ جائے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ذہن میں رکھ لیں. کیا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ خوش تھا یا ہم سے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ پیارے تھے یا آج ہم ہیں؟ تو ہمیشہ نرم زبان کے ساتھ گرم احکامات دے دینے چاہئیں, پھر کوئی مانے یا نہ مانے. چھری کو دیکھیں, تیز چھری اچھی لگتی ہے نا, کن چھری تو نہیں رکھتے. جو کام کرے انسان سلیقے اور ڈھنگ سے کرے. پھر آیت 90 سے 93 کا ٹاپک ہے, ہر دور کے دنیا داروں کی گمراہی مختلف طرح سے ہوئی. یعنی اس آیت میں ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے اور وہ کہ وقال الملأ الذین کفروا, وہ لوگ جو سردار تھے یعنی ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے, کہنے لگے اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم تو بالکل ہی خسارے میں چلے جاؤ گے. دیکھیے یہ ہر دور میں ہوتا ہے, دین پہ آؤ گے تو یہ نہیں ہوگا, بیٹی نے پردہ کر لیا تو رشتہ نہیں ملے گا, لڑکے نے داڑھی رکھ لی تو اس کو جاب نہیں ملے گی, امیگریشن میں مسئلے ہوں گے, یہ ہوں گے وہ ہوں گے. تو ایسے وقت میں انسان کو پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کیا ہوا؟ پس ان کو پکڑ لیا زلزلے نے اور وہ صبح صبح اپنے گھروں میں اوندھے منہ لٹائے گئے. وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو ایسے ہو گئے گویا کل تک بستے ہی نہ تھے, اور وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی تھے اصل میں خاسرین. بینک کرپسی ہمیشہ ان پہ ان کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کے کام میں ملوث ہوتے ہیں. اب شعیب علیہ السلام کا حال کیا تھا؟ فتولّ عنہم, بس وہ تو ان سے پلٹ گئے اور کہا اے میری قوم, میں نے تو پہنچا دیے پیغام تم کو اپنے رب کے اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری, پھر اب کیسے میں درد کھینچوں کافر قوم پہ. دیکھیے کہہ کیا رہے, कि मैं कैसे गम करूं इस कौम पे, लेकिन एक एक जुमले में उनके दिल के अंदर से गम टपकता हुआ दिख रहा है। इससे पता चलता है कि जो सच्चा मोहसिन होता है, जो आपसे मोहब्बत करता है, वो कभी भी आपको गलत काम करता देखकर खुश नहीं होता। आज हमें भी अपने और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए यही सोच रखनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आपके बच्चे तो इंजॉय करें और अल्लाह ताला उन पर गुस्सा आ रहा हो, आपकी बीवी तो अपनी को फरमाइश पूरी करवा ले और अल्लाह ताला को उस पर गुस्सा रहा हो। तो हमेशा अपने साथ वालों को नेकी की दावत देते रहिए, चाहे उनको वक्ती तौर पर बुरा लगे। फिर उसके बाद आयत नंबर 94 से 95 में मसाइबे दुनिया क्यों आते हैं? आजजी देने के लिए। बीमारियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया। और हमने जब भी किसी बस्ती में किसी नबी को भेजा तो वहाँ के जो लोग थे उनको बीमारियों, तकलीफ़ों, परेशानियों में मुब्तला किया। क्यों? लअल्लहुम यद्दर्रऊन, तोड़ने के लिए उनको। फिर हमने बदल दिया तकलीफ़ की जगह अच्छी चीज़ को, सैया की जगह हसना, हत्ता कि वो खूब फलने फूलने लगे और फिर वो कहने लगे, हाँ हाँ तकलीफ़ें तो आती ही हैं, हमारे बाप दादा को भी तकलीफ़ें और ज़र्र आए थे। यानी ढीले हो गए, बजाय इसके कि सबक लेते कि अल्लाह ने हमें एक तकलीफ़ से निकाल दिया, अब हम खुश हों, कहते थे तिल का लैयाम, ये तो होता है, कभी की रातें लंबी कभी के दिन लंबे। अल्लाह ताला कहते हैं हमें इस बात पे गुस्सा आया, फ़ख़ज़नाहुम बग़ततन, हमने उनको अचानक पकड़ लिया, वहुम ला यशउरून, और उनको शऊर भी नहीं था। इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में अल्लाह ताला लोगों को जो आजमाता है ना या तकलीफ़ों में डालता है तो इसके पीछे बहुत सारे असबाब होते हैं। हमें इस आयत से क्या पता चलता है कि बदहाली और खुशहाली दोनों आजमाइश हैं। कभी अच्छा पेपर होता है, कभी बुरा पेपर होता है। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, किसी को उर्दू का सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, लेकिन होते दोनों पेपर ही हैं। फिर दूसरी बात पता चली कि आफत एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जेह करती है। रिवायात में आता है कि फिरौन को अल्लाह ने 100 साल की ज़िंदगी से भी ज़्यादा दिया, लेकिन उसमें उसको कभी दर्द सर ना हुआ। अगर एक दफ़ा भी ऐसा हो जाता तो उसको याद आ जाता कि मेरे भी ऊपर कोई हस्ती है जो मुझे तकलीफ़ में मुबतला कर सकती है। तो अगर तकलीफ़ ना आए तो ये मत सोचिए कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। फिर अगली बात क्या पता चली कि नेमतों को भी आजजी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखिए कि आजजी, आजजी और आजजी, बी हम्बल, बी सॉफ्ट। दुनिया में इंसानों को भी नरमी अच्छी लगती है, अल्लाह को भी नरमी अच्छी लगती है। फिर एक और बहुत ही अहम बात है कि खुशहाली में भी अल्लाह ताला से डरना चाहिए, तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। ये ना सोचा करें कि भाई अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया इसके अंदर कि वो हमसे राज़ी होगा। तो अल्लाह के देने और हमारे इंसानों के एक दूसरे को देने लेने के ज़ाब्ते बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। फिर आयत 96, ईमानो तकवा रिस्क के दरवाज़े खोल देता है। आज गुर्बत का नाम है, आज महंगाई का फितना है, आज हर तरफ लोग कहते हैं परेशानी है, ये है, और ये सिर्फ आपके इस मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में आज ये गुलगुला है। तो आप इस आयत का नाम रख लीजिए, महंगाई का इलाज पता चल गया। क्या? वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकऊ, और अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लेते, अलबत्ता हम खोल देते उन पे आसमान और ज़मीन की बरकतें, लेकिन उन्होंने झुठलाया, पस हमने उनको पकड़ लिया इस वजह से कि जो वो कमाते थे। क्या पता चला कि आज भी अगर हम अपने ईमान में पुख्ता हो जाएं, तकवा को बढ़ा लें, तो ज़मीन भी खून बर निकाले, या ज़मीन से भी फसलें उगेंगी और आसमान से भी अल्लाह की रहमतें उतरेंगी। नेकियों से रिस्क बढ़ जाता है, आम तौर पे एक जाब्ता है। अब आप कहेंगे अच्छा फ़लां तो ऐसा है, फिर इतनी दौलत क्यों है, फ़लां मुल्क ऐसा है, वो तो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वो तो अल्लाह के नबी के साथ ऐसा मामला करते हैं। तो याद रखिए, इम्तिहान के पर्चे, एक अमूमी असूल होता है, एक एक्सेप्शनल केस होता है। तो हमारे लिए दरस इबरत क्या है आयत 97 से 102 में, कि हम ईमान लाएं, हम तकवा लाएं। अफा अमीना अहलुल कुरा, क्या आपस ना बेखौफ हो गए, निडर हो गए बस्तियों वाले इस बात से कि उनके ऊपर आ जाए हमारा अजाब रात को या दिन को और वो सो रहे हों। अब देखिए कि अमूमन जलजला आधी रात को आता है या फजर से बिल्कुल पहले आता है। ये वो वक्त होता है जिस वक्त अमूमन लोग सो रहे होते हैं या सारी रात के जागे हुए इस वक्त धो धो के सोते हैं और अल्लाह पकड़ लेता है। और क्या बस्तियों वाले इस बात से बेखौफ हो गए कि उन पे हमारा अजाब आए दिन चढ़े और वो खेल तमाशों में हो। यानी 10-11 बजे का वक्त होता है, लोग कमाईयों पे निकले हुए हैं, काम हो रहे हैं, बच्चे स्कूलों में गए हैं। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें उस वक़्त भी पकड़ सकता हूँ, क्या बस वो बेखौफ हो गए हैं अल्लाह की पकड़ से। तो अल्लाह की पकड़ से बेखौफ नहीं होता मगर हर वो शख्स जिसके नसीब में खसारा पाना। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि एक एक बात पे अल्लाह जैसे हम अपने बच्चे का कंधा पकड़ के झंझोड़ते हैं? अब जो कुरान पढ़े और समझ ही ना आए उसको क्या लगे कि जलजला क्यों आया, उसको क्या लगे कि फ्लड से क्या लेना है। आज आप देखिए कि हमारे यहाँ मांगने वालों की ज्यादती हो जाती है जब कोई आफत आती है। बैगर्स को एक आधा जुमला अपने लिए मिल जाता है कि जी मैं वहाँ से आया, मैं मेरा घर डूब गया, मैं ये हो गया, लेकिन क्यों नहीं हम इस पैगाम को उन तक पहुँचाते? अल्लाह कहते क्या उनको इस बात की समझ नहीं आई? वो लोग जो ज़मीन पे वारिस बना दिए जाते हैं, यानी हम लोगों को इस ज़मीन पे रहते हुए उनके गुनाहों की सज़ा देते हैं और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। फहुम ला यस्माउन, फिर वो नहीं सुनते। तिलकल कुरा नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये तो बस्तियों की खबरें हैं जो हम आपके ऊपर पेश करते हैं, और बेशक उनके पास उनके रसूल दलीलें लेकर आए थे, लेकिन फमा कानु लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, फिर ये ना हो सका कि वो उस पर ईमान ले आते जिसको पहले से झुठला चुके। लिहाजा कज़ालिका यतबउल्लाहुला कुलूबिल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह मोहर लगा देता है काफिरों के दिलों पे। और आखिर में आप देखिए कि क्या खूबसूरत कमेंट है, वमा वजदना लियक्सरीहिम मिन अहद, ये है असल बात। हमने उनमें से अक्सर को अहद पूरा करने वाला नहीं पाया। और हर दौर के मुसलमान का अहद क्या होता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ। वहीं वजद नाकसरहुम मुल फासिकीन, और उनमें से अक्सर नाफरमान थे। तो हमारे लिए इसमें दर्स इबरत है, कौमों के किस्से पढ़ते जाएं और अपने लिए नसीहत ना ले सके ये बात भी दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा आज से ये नियत रखिए, जब भी कोई क्लेमिटी आए, जब भी कोई आसमानी या ज़मीनी आफत आए, तो इस पैगाम को आम कीजिए कि लोगों को अल्लाह ताला याद आ जाए और आजसी आ जाए।